अथ पौराणिक स्वाध्याय विलयम श्रुति भक्ति का उत्सर्ग करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यो मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहंत भासि यत्थं गणहरदेवैः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्तु सुदनाणमहो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकौ सगो गौतसालोच्यो अंग वंग पैण पाहुड़ परियम सुत्त पड़माणी उग पुब गय चुलिया चेव सुत्त थय थुई धम्म कहायम निच काल मच्छेमी पूजेमी वंदामि नमंसामि दुख कौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अत पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः शक्तिसुगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकर्णसन्दरिसे शिष्याणुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणय तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकाम्मं जम्मणमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयिर्य भक्तिकौ सगो गौ तस्सालोच्यौ सम्मणान् सम्मदन् सण सम्मचरितयुक्ताणं पञ्चव्याचाराणम् आयिर्याणम् अयारादिसुदनाणोपदेशयाणम् उवध्यायाणम् तिर्यणगुणपालनरयाणम् सव्यसाहूणम् निच्छकालमच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मखौ भोहिलाव सुवै गमनम् समाहि मरणम् जिनगुणसम्पत्तिहो मज्जम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी रचित तत्वार्थ की यह टीका सर्वार्थ सिद्धि। आज तत्वार्थ पर उपलब्ध होने वाली टीकाओं में प्रथम टीका है। इससे पुरानी टीका गंधहस्ती महाभाष्य अभी अनुपलब्ध है। तो मंगलाचरण में और इसकी भूमिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर ढंग से तत्वार्थ का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण तो आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है, जिसमें तद्गुण लब्धये वंदे उन गुणों की प्राप्ति के लिए अथवा उनके गुणों की उपलब्धि के लिए वंदन करता हूँ। किनका वंदन करता हूँ? तो तीन विशेषण दिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम्, कर्म भूभृताम भेत्तारम्, विश्व तत्वानाम ज्ञातारम्। नेता का वंदन करता हूँ, भेत्ता का वंदन करता हूँ और ज्ञाता का वंदन करता हूँ। नेता, नेता शब्द की व्युत्पत्ति ऐसी है, णिंग प्रापणे नाम की एक धातु है, तो उसमें त्रिच प्रत्यय कर दें तो नेत्री शब्द बनता है, और फिर उसके रूप चलाओ तो नेता नेतार नेतारो नेतार नेतारम नेतारो ऐसे रूप बन नेत्रीन। तो यहाँ मोक्ष मार्ग से नेतारम द्वितीय का एक वचन, मोक्ष मार्ग के नेता, उसका अर्थ हुआ कि जो पहुंचा दे, पहुंचने का रास्ता बता दे वो अलग है, पहुंचा दे अलग है। तो जो दृष्टांत ऐसा है कि आपके इस नगर में कोई तारंगा जाने वाला यात्री आया हो और आपसे पूछता है जानकारी, तो आप उसको कागज पर पूरी जानकारी दे सकते हैं, और एक दूसरा तरीका यह है कि आप उसके साथ जा सकते हैं। तो यहां पर नेता का अर्थ है मोक्ष मार्ग के नेता, जो मोक्ष मार्ग पर खुद चले हैं और फिर दूसरों को चलने का मार्ग दर्शाया है, वो मोक्ष मार्ग के नेता हो गए। इसका मोटा भावार्थ ऐसा समझ लो, हितोपदेशी, और स्वयं अपना हित करके फिर दूसरों को हित का उपदेश देने वाले। आचार्य समन्वभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत आदिनाथ भगवान की स्तुति में और शांतिनाथ भगवान की स्तुति में इस बात का खुलासा किया। आदिनाथ भगवान की स्तुति में ये लिखा, स्वदोष मूलं स्वसमाधि तेजसा निनाययो निर्दय भस्म सात क्रियाम जगाद तत्त्वं जगतीर्थिनींजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर। इसका अर्थ होता है निर्दय भस्म सात क्रियाम स्वदोष मूलम निनाय, यो माने जिन्होंने अपने दोष रूपी मूल को अथवा अपने दोषों के मूल को निर्दय भस्मसात क्रियाम निनाय, निर्दयता पूर्वक भस्मसात क्रिया यानी बिल्कुल ध्यान रूपी अग्नि में भस्म कर डालना, ऐसी क्रिया को निनाय प्राप्त करा दिया। मतलब पहले जिन्होंने अपने दोषों का नाश किया और फिर अर्थिने जगते तत्त्वम जगाद, इच्छुक जगत के लिए तत्व का कथन किया, मैंने उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया, वस्तु स्वरूप का वर्णन किया, अपने दोषों का नाश किए बिना उन्होंने उपदेश नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, और कैसे नष्ट किया उन्होंने? स्वसमाधि तेजसा, अपने शुद्धोपयोग के तेज से, या शुद्धोपयोग तेज का अर्थ अग्नि भी होता है, अपने शुद्धोपयोग रूपी अग्नि से जिन्होंने उस अपने दोष के मूल को, मोह को, घातिया कर्मों को नष्ट कर डाला, और फिर जगाद तत्व जगतेर्थिने जैसा अंजसा माने खूब अच्छे ढंग से, जिन्होंने अर्थिने जगते इच्छुक जगत के लिए जो चाहती थी कुछ हमें कल्याण का उपदेश मिले, कुछ मार्ग मिले, भटके हुए हैं 84 लाख योनियों में, फिर उन्होंने उपदेश दिया, और फिर च और ब्रह्म पदामृतेश्वर बभूव, अंत में ब्रह्म पद के उस अमृत पद के ईश्वर बन गए, मुक्त हो गए, सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। ऐसी शांतिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति ही शांतिर विधाता शरणंगता नाम भूयाद भव क्लेश भयोप शांति शांतिर जिनों में भगवान शरण्य, मेरे शरण्य शांतिनाथ भगवान भूयात होवे। और कैसे हैं वो? स्वदोष शांत्या, अपने दोषों की शांति पूर्वक, विहितात्म शांति, जिन्होंने आत्म शांति प्रकट कर ली, दोषों को शांत कर दिया तो उनके आत्मा में शांति प्रकट हो गई। शांतिर विधाता, शांति के कर्ता माने गए शांतिनाथ भगवान। क्षयभूषमिक सम्यक दृष्टियों में तो ये चीज आती है चल मलिन अगाड़ में, शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता है, भगवान पार्श्वनाथ विघ्न के हरता है, ये भाव आता है। तो शांतिर विधाता, शांति के कर्ता, विधाता का अर्थ कर्ता होता है। और किन के लिए शांति के विधाता है? शरणंगताना, जो उनकी शरणों को प्राप्त हुए हैं उनके लिए, जो बाहर बैठ करके चाय पी रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं, भगवान की शरण को प्राप्त शरणागत है उनके लिए शांति के कर्ता है। तो उनके प्रति आचार्य समन्वभद्र स्वामी भावना करते, भव क्लेश भयोप शांति, मेरे भव क्लेश भयोप शांति, संसार संबंधी क्लेश और भय की उपशांति के लिए, यानी इनका शमन हो जाए उसके लिए, मैं शरण्य शांतिनाथ भगवान शांतिर्जिन भूयात, मेरे लिए शांतिनाथ भगवान ही शरणभूत होवे। ये भूयात जो है आशीर्लिंग कहलाता है, तो मतलब अपने लिए ऐसा आशीष चाहते हैं आचार्य समन्वभद्र स्वामी कि शांतिनाथ भगवान ही मेरे लिए शांति के विधाता हो जाए और मेरे संसार संबंधी क्लेश और भयों का शमन करने वाले होवे। तो इसमें भी जो विशेषता बताई स्वदोष शांति, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जिन्होंने पहले अपने दोषों को शांत करके अपनी आत्मा में शांति प्रकट की और फिर दूसरों के लिए शांति का निमित्त बन गए। वास्तव में बात भी बिल्कुल उचित लगती है कि जो खुद अशांत है वो दूसरों को कैसे शांति दे सकता है, जो खुद अज्ञानी है वो दूसरों को ज्ञानी कैसे बना सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ही इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक लिखा, अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञान उपास्ति, अज्ञान उपास्ति का विग्रह कैसे बनेगा? अज्ञानम वेद्यते यस्य स अज्ञानः, ये अप्रत्यय होता है एक व्याकरण में, तो उस अप्रत्यय से क्या बना ये अज्ञानम। वैसे मूल शब्द अज्ञानम है लेकिन अज्ञानम विद्यते यस्य स अज्ञानः, अप्रत्यय हो जाने से उसमें विसर्ग लग गया, और अज्ञानस्य उपास्ति ही उपासना इत्यर्थ, अज्ञान उपास्ति ये उसका विग्रह बना। यानी अज्ञानी की उपासना, अज्ञान की उपासना नहीं, अज्ञानी की उपासना अज्ञानम ददाती, अज्ञान को ही प्रदान करती है, और ज्ञानी समाश्रय ज्ञानम ददाती, और ज्ञानी की समाश्रय यानी शरण, ज्ञानी की शरण क्या प्रदान करती है? ज्ञानम ददाती, ज्ञान प्रदान करती है। तो इदम वच सुप्रसिद्धम, ये बात सुप्रसिद्ध यानी जानी पहचानी बात है कि जिसके पास जो होगा वही देगा। अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है इसलिए वो ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञानी के पास अज्ञान नहीं है इसलिए वो अज्ञान नहीं दे सकता, अज्ञानी अज्ञान देता है, ज्ञानी ज्ञान देता है। उसी प्रकार जो शांत हो चुके हैं उनसे शांति की प्रार्थना की जाती है, जो अशांत है उनसे शांति की प्रार्थना नहीं की जा सकती। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो खुद मोक्ष मार्ग पर चले और फिर दूसरों को ले जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। वंदना में एक सामान्य नमन में और वंदना में थोड़ा अंतर है। नमन में क्या होता है कि झुक जाना, नमस्कार करना, और झुकने का मतलब क्या है? सिर्फ शरीर से झुकने का अर्थ झुकना नहीं है, वो तो द्रव्य नमस्कार हुआ, लेकिन झुकाव जो है वो भावों में भी होता है। जैसे मान लो आप विषयों की तरफ हाथ जोड़ करके तो नहीं झुक रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका जो झुकाव होता है इसके लिए आचार्य जी एक दृष्टांत देते हैं कि आपकी थाली में 10 चीजें परोसी हुई है, लेकिन आपका हाल तो एक चीज की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि झुकाव है। उस झुकाव को ही यहां नमन कहते हैं। तो यहां पर नमन मतलब भगवान को या किसी को भी अपन जो नमस्कार करते हैं, इष्ट देवता को, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनके गुणों में अपना कोई आकर्षण है, अपन उनके गुणों के प्रति कुछ खिंचाव रखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की बात नहीं बता रहे, एक भाव नमस्कार भी है। भाव नमस्कार क्या है कि उनके गुणों के प्रति अपन आकर्षित है, इसलिए अपना उस तरफ झुकाव है। वो झुकाव जो है वो नमन है। और फिर साथ में अगर अपन हाथ जोड़ करके ऐसे और झुक जाए, मस्तक को झुका दे, तो फिर वो भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार दोनों साथ में हो जाते हैं। तो ये, और फिर निश्चय नमस्कार और व्यवहार नमस्कार, इसमें भी ऐसे भी दो भेद बनते हैं नमस्कार के। निश्चय नमस्कार, अंतरंग नमस्कार, बहिरंग नमस्कार। अब ऐसे नए विवक्षा से अपन और भी उसके नमस्कार के भेद बना सकते हैं। और अध्यात्म में देखा जाए तो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से तो शुद्ध उपयोग ही नमस्कार है। सिद्धों को जो नमस्कार करोगे आप, तो किस कैसे नमस्कार करोगे? शुद्ध उपयोग में चले जाओ, बस वही नमस्कार होगा। अब द्रव्य नमस्कार में वचनात्मक नमस्कार भी होता है, शरीरात्मक नमस्कार भी होता है। अब शरीरात्मक नमस्कार में फिर पंचांग नमस्कार भी है, अष्टांग नमस्कार भी है। वचनात्मक नमस्कार में स्तुति पूर्वक भी नमस्कार होता है, या फिर नाम ग्रहण पूर्वक भी नमस्कार होता है। श्री पार्श्वनाथाय नमः, ये नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार हुआ है। फिर घोरोपसर्ग विजयिनम पार्श्वनाथाय नमः, विजयिने पार्श्वनाथाय नमः, या विजयिनम पार्श्वनाथम नमामि। तो ये क्या हो गया? ये घोरोपसर्ग विजय, ये गुण हो गया उनका। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से संबंधित किसी घटना को लेकर के उसका स्मरण हो गया, कमठ के उपसर्ग में उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो फिर वैसा नमस्कार हो गया। फिर और विशेष गुणों को लेकर के और नमस्कार करो, तो नमस्कार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो और अपने विशुद्धि स्थान के अनुसार फिर उसके और भी भेद बन सकते हैं कि अपन कितनी पवित्रता से नमस्कार कर रहे हैं, कौन से संयम लब्धि स्थान या फिर असंयम में रह करके किस भाव से नमस्कार कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे भेद बन जाते। वंदन में अंतर है। वंदन में क्या होता है कि वंदन में गुण स्मरण पूर्वक नमस्कार किया जाता है। वंदन जो होता है गुणों का स्मरण करके किया जाता है। तो उसमें क्या है कि ये तो है ही है, उसमें तीन परिक्रमा करना, तीन आवर्त करना, शिरोन्नति करना, ये सारी विधि इसमें शामिल होती है वंदना में। इसलिए मूलाचार्य के जो षडावश्यक अधिकार के अंतर्गत वंदना का वर्णन है, दो उणदम तू जदा जादम, ऐसी गाथा देकर उन्होंने बताया कि कृतिक कर्म पूर्वक जो वंदना साधु करते हैं, 14 क्रिया कर्म होते हैं पूरे 24 घंटे के, और 28 कायोत्सर्ग होते हैं मुनियों के, कायोत्सर्ग आवश्यक में 24 घंटे में, सुबह से लेकर मतलब समझ लो पूरे 24 घंटे में 28 कायोत्सर्ग होते हैं। अब इतना सब अगर इसका विस्तार करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रकरण, लेकिन बात यह चल रही है कि कायोत्सर्ग में 32 दोष बताए, वंदना के भी 32 दोष हैं। सामायिक के ऐसे दोष अलग से नहीं गिने, उसमें तो 5 अतिशार बताए हैं सामायिक के गृहस्थों के लिए। तो उसमें ऐसा है कि वंदना में वो पूरी विधि बताई कृति कर्म की। उसकी विधि में क्या होता है कि तीन आवर्त पूर्वक जो प्रणाम किया जाता है, प्रणाम अंजलि शिरः करणम प्रणाम, ये परिभाषा प्रणाम, अंजलि बांध करके ऐसे सिर में लगा देना प्रणाम, तो ये 4 बार प्रणाम करना पड़ता है पूरे उसमें। और ये जो आवर्त है ये प्रणाम मन वचन काय पूर्वक करना है अपने। अब इसका बीच बीच में अपने को ख्याल करते रहना चाहिए। ये तो निश्चित है कि अपन कई बार प्रणाम करते हैं, और फिर निश्चित है कि आदत पड़ी हुई है अपने को, तो आदत होते हुए भी बीच में कभी ख्याल करना चाहिए कि जो हाथ मैं घुमा रहा हूं, अब आदत पड़ जाने के बाद क्या होता है कि शरीर कुछ और करता है और मन कुछ और करने लगता है। और शुरू में कुछ दिनों तक ऐसा रहता है कि मन को संभाल के रखना पड़ता है, अब मन संभले तो शरीर उसके अनुकूल क्रिया करता है, और थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि वो अभ्यास हो जाने के बाद शरीर की क्रिया अपनी चालू रहती है और फिर मन फिर भ्रमण करने लगता है। तो बीच बीच में ऐसा अब प्रयास करना चाहिए कि ये मैं मन से वचन से काय से, ये जो तीन आवर्त हैं वो मन वचन काय को वहां से यहां लाने के लिए आवर्त कर रहे हैं। फिर ये प्रणाम, और फिर उसके बाद एक पाठ किया जाता है, उसको सामायिक दंडक कहते हैं। नमोकार मंत्र है, छत्तारी मंगल पूरा है, फिर ढाई द्वीप में विराजमान जितने परमेष्ठी है उनको नमस्कार करके उनका विनय करके फिर करेमि भन्ते, संकल्प करते हैं कि मैं ये क्रिया करने जा रहा हूँ, क्रियम्मम। और फिर कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग के पहले फिर से ये विधि है, फिर कायोत्सर्ग करते हैं, 27 श्वास में करते हैं, और उसके बाद फिर से आवर्त प्रणाम, और फिर 24 तीर्थंकरों की स्तुति, और फिर आवर्त प्रणाम करके फिर बैठ के नमस्कार करते हैं। वैसे दो बार बैठकर नमस्कार करना कंपलसरी होता है उसमें, उस विधि में। और वैसे धवला में तो तीन बार नमस्कार करने का बताया बैठ करके, तो कोई साधु तीन बार भी करते हैं, मूलाचार में दो बार बताया। तो उसमें तो आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि अधिक बार करने में नुकसान नहीं है, और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी कहा, अपन ने पढ़ा था शीतकाल में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का स्वाध्याय हुआ था, तो उसमें आया था कि इतरत्र पुनः समय न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम। सामायिक कम से कम दो बार करना चाहिए बोले शिक्षा व्रत धारण करने वाले को, लेकिन अगर इतरत्र पुनः समय बीच में कभी एक आध बार और कर ले तो तद दोषाय न कृतम, वो दोष के लिए नहीं होगा बल्कि तद गुणाय कृतम, उससे आपके गुण ही बढ़ेंगे, नुकसान नहीं होने वाला। तो मोक्ष मार्ग के नेता कर्म भूभृताम भेदतारम, कर्म रूपी भूभृत, भूभृत का अर्थ पहाड़ होता है, अब पहाड़ को फोड़ना डायनामाइट से भी मुश्किल है। अभी जो ब्लास्ट्स होते हैं ना, आवाज आती है कभी बीच में, कहीं चट्टाने फोड़ी जाती हैं मार्बल की खदानों में, या फिर कहीं और पहाड़ों में भी बहुत सारे चट्टाने तोड़ी जाती है, तो वो डायनामाइट के ब्लास्ट से भी पहाड़ टूटता नहीं है, वो चट्टान टूटती है, और वो भी जितना उसकी शक्ति है उसके हिसाब से टूटती है, लेकिन ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि ऐसा लगता है कि पूरी धरती में कंपन आ गया हो, एक झटका लगता है पैरों में अगर आप खड़े रहो वहां पास में। तो जब डायनामाइट के ब्लास्ट से भी पहाड़ एक बार में नष्ट नहीं होता, तो फिर कर्म रूपी पहाड़ के लिए कितने ब्लास्ट लगाने पड़ेंगे, कितनी बार धर्म ध्यान करना पड़ेगा, कितनी बार तपस्या और कितने संयम विशुद्धि स्थान को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के कर्म रूपी पर्वत टूटेगा। बल्कि वो पर्वत एक पर्वत नहीं है, भूभृताम बहुवचन दिया, बड़े बड़े बहुत सारे कर्मों के पहाड़ हैं। अब एक ब्लास्ट से जब एक पहाड़ भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होता है, मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा टूटता है, तो फिर कितनी विशुद्धि प्राप्त की होगी भगवान ने, जब जाकर के उन्होंने घातिया कर्मों का पूर्ण क्षय किया हो। इसलिए जब अपन तटस्थ होकर शांत होकर के विचार करते हैं कि अपन देखो कितनी आसानी से भगवान को ऐसे नमस्कार कर लेते हैं, और जब विचार करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, तो फिर नमस्कार में भी अंतर आता है। मतलब ऐसे नमस्कार कर लेना रोज की आदत के अनुसार उसमें, और फिर थोड़ा सा स्मरण करके कि जरा सी बात पर मेरे अंदर जो कषाय होती है वो सात सात दिनों तक शांत नहीं होती, कभी 15 दिनों तक के वो चीज चल जाती है, कभी महीनों तक चलती है। और फिर उन्होंने कितना बड़ा काम किया कल्पना करो, मतलब अपने में और उनमें जब फर्क अपन ख्याल में लाते हैं तब अंदर से लगता है कि हे भगवान, बस कोई ऐसी शक्ति मुझ में भी प्रकट हो जाए कि मैं वहां तक आ जाऊं जहां तक आप चले गए। बहुत दूर है भगवान और अपन, ये कहना बहुत सरल है कि तीन भाव में मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन 30 भाव में भी मोक्ष प्राप्त करना कितना कठिन है उसकी आप कल्पना करो तो समझ में आए, बहुत मुश्किल काम है। तो कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने चकनाचूर कर डाला, कितनी बड़ी बात की उन्होंने, तो उसका स्मरण करने पर हम अक्सर वहां जब थुगोंजी में चमासा था तो शाम को बैठते थे और ऐसे मंदिर के पीछे हम यही सोचते रहते थे। बहुत अच्छा जंगल था तो वहां देखते हुए ऐसा विचार आता था मन में कि बड़े बड़े साधुओं ने ऐसे स्थानों पर तपस्या की है और मोक्ष प्राप्त किया है, उनमें भी कुछ ऐसे साधु हैं जिन्होंने उपसर्गों को सह करके उस पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है, और फिर उनका नाम भी कोई नहीं जानता, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनका नाम दुनिया में। यश कीर्ति कर्म का उदय है वो, और वो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी अगर किसी के यश कीर्ति का उदय हो तो फिर जॉर्ज बुश को सारी दुनिया जानती है। कौन नहीं जानता जॉर्ज बुश को, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। कर्म का उदय, और फिर कई ऐसे केवली भगवान हैं कि जिनके यश कीर्ति का उतना उदय नहीं था, प्रबल उदय नहीं था, तो फिर उन्हीं के तीर्थ वाले जो अन्य साधु थे उनको पता नहीं था उनका नाम है ना। हाँ वो तो ठीक। हाँ ये शंका अच्छी शंका, उसका भी समाधान हम बता देंगे आपको। तो एक तो बात ये है कि अयश कीर्ति का उदय चौथे गुणस्थान के आगे नहीं होता, और पांच अणुव्रतों को जीवन भर जो धारण नहीं करता उसका चौथा गुणस्थान नहीं होता, ये भी नियम है। और अणुव्रतों को धारण करके भी शल्य का त्याग करना उसको आवश्यक है, तब उसका गुणस्थान पंचम गुणस्थान होता है। अकेला ब्रह्मचर्य व्रत किसी के पास हो या फिर किसी ने सच बोलने का नियम ले लिया, सत्य व्रत ले लिया, तो वो व्रत ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसका एक संकल्प है मात्र। लेकिन व्रती की श्रेणी तब प्राप्त होती है जीव को जब वो पांचों अणुव्रत धारण करता है। अब तिरेंच गति में जो है 11 प्रतिमाएं नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका के अनुसार वो अपने व्रत धारण कर लेते हैं। पांच अणुव्रत तो नियामक होते हैं। अब पहली प्रतिमा में पांच अणुव्रत जो होते हैं उसमें अतिचार भी हो सकते हैं, और दूसरी प्रतिमा में निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम, अतिक्रमण से रहित अतिचारों से रहित पांच अणुव्रतों का पालन किया जाता है। लेकिन अणुव्रत नियामक है पंचम गुणस्थान के लिए, और पंचम गुणस्थान पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक बनता है श्रावक धर्म में। और वैसे तिरेंच गति की अपेक्षा से देखो तो पांच अणुव्रत धारण कर लिए किसी जीव ने तो वो व्रती की श्रेणी में आ जाता है। असंख्यात तिरेंच ऐसे हैं स्वयंभू रमण में द्वीप समुद्र में कि जो व्रती हैं, और यहाँ पर ढाई द्वीप में मनुष्य लोक में संख्यात तिरेंच है जो व्रती है, क्योंकि यहाँ पर पंचेंद्रीय तिरेंचों की गण जो मात्रा है प्रमाण वो असंख्यात नहीं है। ढाई द्वीप में पंचेंद्रीय तिरेंच ही संख्यात है, तो फिर यहां पर असंख्यात तिरेंच पंचम गुणस्थान वाले नहीं हो सकते। तो सीता का जो लोकापवाद हुआ था और उसकी पीड़ा का अनुभव भी हुआ था, उसको अपयश का एहसास हुआ था, ये जो कर्म होता है अयश कीर्ति, इसका फल जीव को मिलता है, यानी इसका अनुभव जीव करता है। अगर किसी का अपयश हो रहा है और उसको अपयश का अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि उसके अयश कीर्ति का उदय है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्थान पर किसी का यश है और दूसरे स्थान पर उसका अपयश है, तो अब निर्णय कैसे करोगे कि उसके कौन से कर्म का उदय है? एक साथ दोनों चीजें चल रही है, गुजरात में किसी का अपयश चल रहा है और एमपी में उसका यश चल रहा है,